नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों का कल्याण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार संकल्पित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में माता जानकी मंदिर के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू। इच्छुक उम्मीदवार 21 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। और गंगा, सोन और बागमती नदी के जलस्तर में हो रही लगातार वृद्धि से तटवर्ती इलाके बाढ़ की चपेट में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती पर लागत कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि राष्ट्र की प्रगति का आधार किसानों की शक्ति है।
हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं।
श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुग्ध, दाल और जूट के उत्पादन में विश्व में नंबर एक है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष देश में अब तक का सबसे अधिक अन्न उत्पादन हुआ। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने जैव खुशहाली का मंत्र दिया।
डॉक्टर स्वामीनाथन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बायो हैप्पीनेस का आइडिया दिया। डॉक्टर स्वामीनाथन कहते थे कि बायोडायवर्सिटी की ताकत से हम स्थानीय लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लोकल रिसोर्सेज के इस्तेमाल से लोगों के लिए आजीविका के नए साधन बना सकते हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि 2014 से प्रधानमंत्री मोदी लगातार देश के किसानों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं।
चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे एमएसपी बढ़ाने की बात हो, चाहे कृषि को बजट को 5 गुना करने की बात हो, चाहे जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात हो, अनेक उपाय किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि इस देश के किसानों की आमदनी दुगनी हो।
निर्वाचन आयोग ने आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना जारी कर दी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन 21 अगस्त तक दाखिल किए जा सकते हैं और मतदान 9 सितंबर को होंगे।
पिछले महीने उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह चुनाव आवश्यक हो गया है। यह 17वां उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। अधिसूचना के अनुसार इच्छुक उम्मीदवार इस महीने की 21 तारीख तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जाँच 22 अगस्त को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि इस महीने की 25 तारीख होगी। मतगणना 9 सितंबर को होगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
संसद में बिहार के मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी बाधित हुई। पीठासीन अधिकारी ने शून्यकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विशेष गहन पुनरीक्षण मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी।
आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपनी अपनी सीट पे जाएं। नहीं, अगर आप कोई बात चाहते हैं, नहीं, आप लोकसभा के बेल में भी रहेंगे और विधेयक पे चर्चा भी नहीं करेंगे, इस लोकसभा को बाधित करेंगे, सत्र की कार्रवाई बाधित करेंगे, ऐसे सदन नहीं चलेंगे। लोकसभा की कार्रवाई आप सदन को नियमित चलाना चाहते हैं सुचारू रूप से, तो औजला साहब बैठिए, बर्वे साहब बैठिए। आप
इधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित हुआ। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि राज्यसभा की कार्यवाही में लगातार बाधा से 51 घंटे से अधिक का समय बर्बाद हो गया।
हमारे पास 180 स्पेशल मेंशन रेज करने का मौका था, लेकिन लगातार व्यवधान के कारण हम केवल 13 स्टार्ट क्वेश्चंस, 5 जीरो आवर सबमिशंस और 17 स्पेशल मेंशंस ही ले पाए। व्यवधान के कारण इस सत्र में तक 51 घंटे 30 मिनट हम गंवा चुके हैं। हमारी जिम्मेदारी देश की जनता के प्रति है। आप हाउस में ऑर्डर बनाए रखे, मैं आपको बोलने का मौका दूं।
जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद संजय झा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने बिहार में SIR का काम बखूबी किया है। श्री झा ने बताया कि आयोग ने आपत्तियां भी मांगी हैं, लेकिन अभी तक किसी भी दल ने आयोग से संपर्क नहीं किया है।
94% लोगों ने अप्लाई कर दिया, 7% लोग जो नहीं किए उसका भी डिटेल इलेक्शन कमीशन ने दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने यहाँ तक कहा कि भाई अगर ऑब्जेक्शन है, 1 महीने का समय है, आप आकर के कागज दिखाइए, उसको ठीक किया जाएगा अगर सही होगा तो। बिहार में जो विपक्ष के नेता है, दिखाए कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कागज दिखा दिया कि आपका नाम है, पता चला कि वो दूसरा एपिक दिखा रहे थे।
सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में उन्होंने 3 सदस्यीय आंतरिक जांच समिति के निष्कर्ष वाले उस प्रस्ताव को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें हटाने की सिफारिश की गई थी। शीर्ष न्यायालय की पीठ ने कहा कि उनकी याचिका विचारणीय नहीं है। तत्कालीन दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा 14 मार्च को दिल्ली स्थित अपने आधिकारिक आवास पर जली हुई नकदी मिलने के बाद जांच के दायरे में आ गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंतर जिला स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए प्राथमिकता के आधार पर उनकी पसंद के 3 जिलों में से किसी एक में स्थानांतरण की सुविधा देने की घोषणा की है। शिक्षक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। श्री कुमार ने आज सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि विकल्प प्राप्त होने के बाद शिक्षकों का उन्हीं जिलों में पदस्थापन किया जाएगा। जिलों के अंदर पदस्थापन का कार्य जिला पदाधिकारी की समिति करेगी। सरकार ने नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाने से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कहा कि ये प्रतियोगिता मेरा युवा भारत पहल के अंतर्गत आयोजित की जा रही है और नागरिक माई भारत पोर्टल पर क्विज में भाग ले सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में माता जानकी मंदिर के निर्माण का शिलान्यास करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी समारोह में शामिल होंगे। 125 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले इस मंदिर का निर्माण कार्य 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर परिसर के विकास के लिए 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। राज्य सरकार ने मंदिर और परिसर के विकास के लिए 882 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी है। इस दौरान श्री शाह सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ भी करेंगे। इस बीच मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने पुनौरा धाम रेलवे स्टेशन बनाने के लिए रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पुनौरा धाम में बनने वाला मंदिर न केवल श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख धार्मिक केंद्र बनेगा बल्कि मिथिला की सांस्कृतिक विरासत को भी वैश्विक पहचान दिलाएगा।
जब अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना उसी समय से बिहार के श्रद्धालुओं की ये इच्छा थी कि माता सीता का मंदिर पुनौरा धाम में बने। बिहार सरकार को और विशेष करके भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हम हृदय के गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि माता सीता का जो भव्य मंदिर का शिलान्यास भूमि पूजन कल 8 अगस्त को सीतामढ़ी के धरती पर हो रहा है। पूरा मिथिलावासी, बिहारवासी और देश पलके बिछाए उस समय का इंतजार कर रहे हैं।
मॉनसून की सक्रियता के कारण प्रदेश के अधिकतर भागों में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर और दक्षिण पश्चिम भाग के कुछ जिलों में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के उत्तरी और दक्षिणी भागों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के पूर्वानुमान के अनुसार कल पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज जिलों में अति भारी बारिश की संभावना है।
8 अगस्त 2025 को राज्य के उत्तर और दक्षिण पश्चिम भाग के अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना है एवं शेष भागों अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है। उत्तर बिहार के जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। दक्षिण बिहार के जिलों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिलों के एक या दो स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, कैमूर, सुपौल, मधेपुरा और बक्सर जिलों के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
पड़ोसी राज्यों के साथ ही राज्य के विभिन्न भागों में बारिश के कारण गंगा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती समेत सभी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी बक्सर, पटना, मुंगेर और भागलपुर में विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी बराज से पानी छोड़े जाने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे जिले के दियारा और तटवर्ती क्षेत्रों के लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
कोसी बराज से छोड़े गए पानी से जिले के सलखुआ प्रखंड के तटबंध के भीतर चानन, अलानी, सामर खुर्द पंचायत के विभिन्न निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। सलखुआ प्रखंड के पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर दियारा क्षेत्र के कई विद्यालय परिसर में पानी प्रवेश कर गया है, जिससे स्कूली बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तटवर्ती इलाकों में अधिक पानी आ जाने के कारण लोगों की आवाजाही प्रभावित है। आकाशवाणी समाचार के लिए सहरसा से आरती कुमारी।
गंगा और कोसी नदी में आए उफान से कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। इससे इन इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। एक रिपोर्ट।
कटिहार जिले में गंगा, कोसी, कारी कोसी और बरंडी नदी का जलस्तर जहां एक ओर बढ़ रहा है, वहीं महानंदा के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है। इन नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब 1.5 फीट ऊपर बना हुआ है। गंगा और कोसी नदी में आई उफान से कुर्सेला प्रखंड में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। इन इलाकों में लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। पानी आ जाने के बाद आवागमन बाधित है। कुर्सेला प्रखंड के मलिन या मिर्जापुर के दर्जनों घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे लोग ऊंचे और सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। इधर बाघमारा, पंचकुटी, पत्थर टोला और खेरिया जाने वाली सड़क भी जलमग्न है। इन सड़कों पर करीब 3 से 4 फीट पानी बह रहा है। धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी।
मुंगेर जिले में गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके कारण लोगों का पलायन शुरू हो गया है।
गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार करने के बाद तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। सदर प्रखंड के गंगा पार जाफरनगर पंचायत के सीताचरण गांव के लोगों का पलायन शुरू हो गया है। प्रभावित लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह।
सुपौल जिले के भीमनगर स्थित कोसी बराज से आज शाम 4 बजे 1,32,025 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भीमनगर स्थित कोसी बराज से आज शाम 4 बजे तक 1,32,025 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया, जबकि कल इस समय कोसी बराज से 1,71,640 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया था। कोसी बराज कंट्रोल रूम के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोसी नदी के डिस्चार्ज में कमी आई है। इधर नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र बाराह से 93,425 क्यूसेक पानी घटते क्रम में छोड़ा गया है। जल संसाधन की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है। अभियंताओं द्वारा लगातार तटबंधों की निगरानी की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों का कल्याण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार संकल्पित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में माता जानकी मंदिर के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू। इच्छुक उम्मीदवार 21 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। और गंगा, सोन और बागमती नदी के जलस्तर में हो रही लगातार वृद्धि से तटवर्ती इलाके बाढ़ की चपेट में। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।